मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 8 अक्टूबर 2018 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि आज का जो दिन है वह जीवन प्रसंगों का दिन है और जो जीवन प्रसंग भी लिए जाते हैं वो इतिहास के कुछ ऐसे हिस्से लिए जाते हैं जिन पर आपका थोड़ा सा यकीन हो सके और कुछ ज्यादा ही यकीन हो सके। इसके लिए आज मैंने थोड़ा सा एक नया रुख अख्तियार किया है और वह रुख यह है कि आज मैं आपको किसी के जीवन का एक अंश ज्यों का त्यों पढ़कर सुना रहा हूं और ये जिसका अंश है आप सुनकर थोड़े से आश्चर्यचकित होंगे, वो अभी भी आप हम सबके बीच में है और उनकी जो उम्र भी है अभी केवल 23 साल की है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि यदि आप इस अंश को पढ़ना चाहते हैं तो संडे यानी कि कल का जो दैनिक हिंदुस्तान है उसमें बकायदे यह आर्टिकल छपा भी है और मैं यह आर्टिकल ज्यों का त्यों आपको पढ़कर सुना रहा हूं। मित्रों, इससे पहले कि मैं आर्टिकल पढ़ना शुरू करूं, मैं दो बातें आपसे कहना चाहूंगा। देखिए, आर्टिकल तो आप वैसे भी पढ़ सकते हैं, मैं इसे डाल भी सकता था, डालूंगा ही, आप उसे पढ़ेंगे भी, लेकिन मैं जानबूझ करके कुछ बातें आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। पहली बात तो यह है कि जब आप इस आर्टिकल को अभी सुनेंगे या बाद में पढ़ेंगे तो प्लीज केवल कानों से मत सुनिए और केवल दिमाग से ही मत समझिए, बल्कि थोड़ा सा दिल का भी उसमें इस्तेमाल कीजिए, दिल भी लगाइए, हृदय से भी उसे सुनने और समझने की कोशिश कीजिए, यानी कि संवेदना के स्तर पर उतरिए, तभी आप उसे महसूस कर पाएंगे। देखिए, जब हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं उसके दो भाग होते हैं, एक तो उसका सीधे सीधे अर्थ होता है जिसे हम शब्दार्थ कहते हैं, हर कोई इसे समझ लेता है, दूसरा उसका भावार्थ होता है, मतलब उसके भाव क्या है, और भाव और शब्द के अर्थ इन दोनों को समझे बिना इनफैक्ट सही मायने में आप उसके सार को नहीं पकड़ सकते। देखिए, बहुत से म्यूजिक होती है, म्यूजिक में आपको ठीक है उसके भावार्थ तो समझ में आ रहे हैं, कानों को अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो मामला थोड़ा सा अधूरा रह जाएगा। तो मामला पूरा ही दोनों स्तरों की समझ विकसित करने से होता है, पहली बात। मित्रों, जो दूसरी बात है वो किसी भी मायने में पहली बात से कम महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब मैं इस पूरे प्रसंग को पढ़ूंगा तब बीच बीच में एक कई स्थितियां ऐसी आएंगी कि आपके मन में क्रोध का भाव पैदा होगा, कभी करुणा का भाव पैदा होगा, कभी आप कुछ कंफ्यूजन से महसूस करेंगे, मतलब इस तरह की स्थितियां आएंगी, बशर्ते कि आप संवेदना के साथ सुनना शुरू करें। जहां भी आपको क्रोध का भाव महसूस होता है वहां मेरा एक निवेदन यह है मित्रों कि आप वहां थोड़ी देर के लिए रुकें। खैर, जब मैं अभी बोल रहा हूं तब तो आप नहीं रुक पाएंगे, लेकिन जब आप पढ़ रहे होंगे, और प्लीज ऐसा करें भी, मेरे सुनने के बाद इसे खत्म ना समझे, इसे पढ़ें भी, तो जहां भी आपको गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है या थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, वहां थोड़ा सा रुकें और ये समझने की कोशिश करें कि ये जो गुस्सा है आपका किसके प्रति है। देखिए, तुरंत आप पकड़ लेंगे कि किसके प्रति है, लेकिन मैंने कहा समझने की कोशिश करें कि यह गुस्सा किसके प्रति है, उसे नोट कर लीजिए और फिर उस पर थोड़ा सा विचार कीजिए कि आपका गुस्सा अभी जिसके प्रति है क्या वह जायज है। जायज है तो बात खत्म हो गई, और पॉइंट लिखिए कि क्यों जायज है, क्यों सही है, और अगर सही नहीं है, आपको लगा कि नहीं नहीं यार ये तो सही नहीं है, तो फिर सोचिए कि फिर यह गुस्सा है क्यों, किसके प्रति होना चाहिए। क्योंकि देखिए, गुस्सा बहुत रचनात्मक तत्व है, रचनात्मक भाव है, बशर्ते कि वो सही के प्रति हो, सही समय पर हो, सही जगह पर हो और उसका इस्तेमाल सही तरीके से हो, अदरवाइज यही गुस्सा वह आग होती है जो हमें जलाकर खत्म कर देती। गुस्सा नहीं होना चाहिए, फिर बहुत बुरी चीज है, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल सही हो रहा है तो बुरी चीज भी नहीं है, बल्कि सच यह है कि एक अच्छी चीज है। तो बीच बीच में आपको इस भाव का एहसास होगा, आप में गुस्सा आएगा, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि यह किसके प्रति होना चाहिए। आएगा वो तो मुझे मालूम है कि किसके प्रति आएगा, मैं जो यहां कह रहा हूं कि किसके प्रति आना चाहिए था, क्योंकि जब अगर गुस्सा गलत के प्रति आ रहा है तो सीधी सी बात है कि वो गुस्सा गलत परिणाम देगा और यही ज्यादातर होता है। 99% मामलों में मित्रों यही होता है, ध्यान दीजिएगा, राइट। और फिर अगर आप उचित समझें तो मुझे मेल लिख दें, लेकिन छोटा सा मेल लिखें, उसमें आप लिखें कि इस जगह पर मुझे इसके प्रति गुस्सा आया और क्यों आया। हो सकता है कि आप लोगों के मेल पढ़ने के बाद इस विषय को मुझे फिर से आगे बढ़ाने का मौका मिल जाए, और मुझे लगता है कि इसके माध्यम से हम थोड़ा सा यह भी समझ सकेंगे या इस बिंदु पर भी बात कर सकेंगे कि हमें जिंदगी को कैसे समझना चाहिए, जिंदगी का हमें कैसे विश्लेषण करना चाहिए। देखिए, वो जिंदगी किसी की भी क्यों ना हो, उसमें कहीं ना कहीं हमारी जिंदगियां भी शामिल होती हैं। तो अगर हम किसी दूसरे की ही जिंदगी का विश्लेषण करने लगते हैं तो मान करके चलिए कि कहीं ना कहीं हम अपनी जिंदगी का विश्लेषण करने का तरीका भी सीखने लगते हैं, जो बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, चूंकि अब वक्त ज्यादा नहीं है, इसलिए अब मैं इस अंश को पढ़ने की शुरुआत कर रहा हूं। इसका शीर्षक है, मुझे जबरन बालिका वधु बनाया गया। ये नीतू सरकार के ऊपर है, नीतू सरकार। अब मैं तेजी के साथ थोड़ा सा पढ़ूंगा। यह कहानी हरियाणा के एक छोटे से गांव बेड़वा की है। यहां अक्सर स्थानीय पहलवानों के बीच दंगल हुआ करते थे। जब भी गांव या उसके आसपास कहीं पहलवानी होती तो बच्चों बूढ़ों का हुजूम उमड़ पड़ता था उसे देखने। इस भीड़ में नन्ही नीतू भी शामिल रहती थी। बड़ा मजा आता था इस खेल में। मन में सपना पनपने लगा था कि मैं भी बड़ी होकर पहलवान बनूंगी, पर घर वालों ने कुछ और ही सोच रखा था। नीतू तब महज 17 साल की थी। तभी उनके अनपढ़ माता पिता ने 45 साल के एक आदमी के साथ उनकी शादी तय कर दी। वह बहुत गिड़गिड़ाई कि मुझे ससुराल मत भेजो, पर घर वाले नहीं माने। ससुराल के हालात भयावह थे। पति मानसिक रूप से अस्वस्थ भी था, एक पल भी चैन से नहीं गुजरा वहां। हर समय दहशत में रहती थी मीनू। नीतू के प्रति ससुराल के बाकी लोगों का रवैया भी अच्छा नहीं था। ससुर उसके दादा की उम्र के थे, लेकिन वह नीतू को गलत निगाह से देखते थे। नीतू उससे दूर रहा करती, याद रखिए, नीतू से दूर रहा करती नहीं शब्द इस्तेमाल किया गया है, नीतू उससे दूर रहा करती। सम्मान सूचक शब्द है और इस लड़की की उम्र है महज 23 वर्ष। ध्यान दीजिए इस शब्द पे। खैर, शादी हुए मुश्किल से एक हफ्ता बीता था। वह घर में अकेली थी। अचानक ससुर ने उनके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। पता नहीं उस पल उनके अंदर कहां से इतनी हिम्मत आ गई। खुद को ससुर के चंगुल से बचाकर भाग निकली। किसी तरह पिता के घर पहुंची। सोचा कि जब मां और बाप को इस घटना के बारे में पता चलेगा तो वे उनका साथ देंगे, लेकिन घर वालों ने हमदर्दी जताने की बजाय उल्टा डांट लगाई। नीतू कहती हैं, 13 साल में ही शादी कर दी गई। वह मेरे जीवन का सबसे खराब दिन था। एक हफ्ते बाद ही मैं वहां से भाग आई। मां को एक ही चिंता थी कि जब गांव में यह खबर फैलेगी कि इनकी बेटी ससुराल से भाग आई तो बड़ी बदनामी होगी। वह चाहती थी कि किसी तरह बेटी को दोबारा ससुराल भेज दिया जाए, पर नीतू किसी हालत में पति के घर जाने को राजी नहीं हुई। मायके के भी दिन अच्छे नहीं बीते। हर समय उन्हें टोका जाता। पिताजी किसी हालत में बेटी को घर पर बिठाने को राजी नहीं थे, इसलिए जल्दी ही उनकी दूसरी शादी करा दी गई। अब नीतू के पास कोई रास्ता नहीं था, उन्हें अपने नए ससुराल जाना ही पड़ा। यहां भी हालात अच्छे नहीं थे। पति के पास नौकरी नहीं थी, घर का खर्च सास की पेंशन से चलता था, पर नीतू की कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि इस पति का व्यवहार उनके प्रति अच्छा था। वह उनके दर्द को समझता था। 14 साल की उम्र में नीतू जुड़वा बच्चों की मां बन गई। बच्चे होने के बाद घर का खर्च बढ़ गया। नीतू को सास से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता था। वह कुछ करना चाहती थी। परिवार के पास न खेत थे और न ही जमीन। कुछ दिनों तक उन्होंने दूसरे के खेतों में मजदूरी की और फिर कपड़े सिलकर गुजारा किया, पर इससे कुछ खास कमाई नहीं हो पाती थी। उनके मन में अजीब सी तड़प थी। वह घर के हालात बदलना चाहती थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। एक दिन बातचीत में उन्होंने पति से कहा कि काश मैं कुश्ती सीख पाती। मैं बचपन से पहलवान बनना चाहती थी लेकिन मौका नहीं मिला। पति ने कहा कि अब भी देर नहीं हुई है, तुम अब भी अपना सपना पूरा कर सकती हो। हालांकि सास को पहलवान बनने का बहू का इरादा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर नीतू तय कर चुकी थी कि उन्हें कुश्ती की ट्रेनिंग लेनी है। यह 2011 की बात है। तब वह मात्र 17 साल की थी और उनके बच्चे 3 साल के थे। गांव के अखाड़ों में पुरुषों का वर्चस्व था। इसलिए पहली बार जब वो वहां ट्रेनिंग के लिए पहुंची तो उन्हें रोका गया, पर नीतू ने इन बातों को नजरअंदाज किया। अब पहली चुनौती थी वजन कम करना और शरीर को मजबूत बनाना। उन्हें रोजाना 2 घंटे दौड़ने की सलाह दी गई, पर मन में डर था कि गांव वालों ने उन्हें दौड़ते हुए देखा तो वे मजाक उड़ाएंगे। इसलिए वह रात के 3 बजे उठकर दौड़ती थीं और सुबह 5 बजे तक घर लौट आती थीं ताकि कोई देख न पाए। नीतू कहती हैं, मुझे बचपन से ही कुश्ती का शौक था। मैं पहलवान बनना चाहती थी पर मुझे बालिका वधू बना दिया गया। मुझे पढ़ने का मौका भी नहीं मिला। गांव में शुरुआती अभ्यास के बाद वह रोहतक एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए पहुंची। रोहतक उनके गांव से करीब 50 किलोमीटर दूर था। नीतू बताती हैं, मुझे करीब 2 साल तक अपने बच्चों से दूर रहना पड़ा। पिता ने उनकी देखभाल की। जब भी ट्रेनिंग से फुर्सत मिलती थी मैं भागकर गांव चली जाती थी। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें नेशनल गेम्स में खेलने का मौका मिला। पहली इस स्पर्धा में उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। इस कामयाबी के बाद नीतू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। खेल कोटे से सशस्त्र सीमा बल में नौकरी मिल गई। 2015 में नेशनल गेम्स में सिल्वर मेडल जीता। हाल में उन्होंने अंडर 23 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। अब वह नवंबर में होने वाली अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी में जुट गई है। मित्रों, ये कहानी जो कहानी नहीं जी सच्चाई है, मैंने आप लोगों के सामने रखा है। मेरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं और अब मैं इस पर विचार करने के लिए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। अपने अभिवादन के साथ स्वीकार करें। नमस्कार।